नमो वज्जायाणम्, नमो लोये सौवसाहूणम्, एषो पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिं पढमं हवै मङ्गलम्, पढमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज नया पाठ प्रारंभ हो रहा है। दूसरा पाठ का नाम है नमोकार मंत्र एवं पंच परमेष्टि। क्या नाम है? नमोकार मंत्र एवं परमेष्टि। परमेष्टि मन को एकाग्र करें। मन की एकाग्रता जो ही होने लगती है हमारे भाव परिवर्तित होते, अशुभ से हटकर शुभ में आ जाते हैं। शुभ में लगाने के लिए पुस्तक को जल्दी खोल कर रखना पड़ता है। और क्यों जल्दी खोल करके रखना पड़ता है? जल्दी से अपने को अशुभ से निवृत्त होना है। तो स्वाध्याय शुरू होते ही खोल के रख दिया, दूसरा पाठ क्या चल रहा है सुनना प्रारंभ कर दिया। सीट पर व्यवस्थित बैठे हैं ना, गाड़ी छूट रही है। पहला पाठ का नाम क्या था? जैन धर्म का सामान्य परिचय। पहले पाठ के माध्यम से जैन धर्म का परिचय तो मिल गया, बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ है, बहुत दिन तक चला। जैन धर्म किसको कहते हैं ये तो बताया। जीतने वालों का धर्म, सभी प्राणी मात्र का धर्म। हम अपने अपराधों को जीते, अपराध अनादिकाल से होते चले आ रहे हैं, हमारे अपराधों को पुनः न हो ऐसा प्रयत्न, ऐसा पुरुषार्थ करना और अपराध पर विजय प्राप्त करना, ये जैन धर्म है। ये बच्चों का काम नहीं, किसका है बच्चा? वो पीछे बैठी है। एकाग्रता टूटती है ना सबकी। हाँ, वहां बैठ सकते उनको लेकर। हमें विजेता बनना है। किसका विजेता? हमारे दोषों का, अपराधों का, पापों का विजेता बनना है। जीव के द्वारा पाप होता है, ये पाप दोष है या नहीं? प्रति समय आत्मा कुछ न कुछ अशुभ सोचता है, विचार करता रहता है और उससे कर्म का बंध होता रहता है। ये ये क्या है? देखो अभी भी डिस्टर्ब। अब पुस्तकें कुछ पहले से ही पीछे रखना चाहिए। रखा है क्या? नहीं पीछे। हो गया, अब हिलना नहीं, और कोई आ गया जाए तो उनको देखना नहीं, वो जहां चाहिए वहां बैठ जाए पर उनके तरफ मत देखो, एकाग्रता टूटती है। क्या बता रहे हैं? अपने दोषों को जीतने वाला जैन कहलाता है, और दोष सारे होते हैं तो कहां होते हैं? भीतर होते हैं कि बाहर होते हैं? पहले भीतर होते हैं, फिर बाद में घटना घटती है। काया रूप से हम जब दोष करते हैं तो बाहर दिखाई देता है, वचन रूप जब हम बोलते हैं, वचन प्रवृत्ति करते हैं और घटना घटते हैं तो बाहर दिखता है वो, किंतु मन के दोष बाहर दिखते हैं? मन के दोष बाहर नहीं दिखते, और जो मन के दोष होते हैं वो असली दोष होते हैं। उनको जीतने वाले को जैन कहा है, मन पर विजय प्राप्त करने वाले जीव को जैन कहा है। जैन कुल में पैदा होने मात्र से कोई जैन नहीं होता, वो तो कुल का जैन, पर अभी जैनत्व नहीं आया। व्यावहारिक दृष्टि से उसको जैन कहा है, क्यों? जैन कुल में जन्मने मात्र से जैन कहा। अब ये जैन बन सकता है जैनत्व आने पर, गाड़ी का जो बॉडी है वो गाड़ी नहीं है, गाड़ी अलग है बॉडी अलग है। बॉडी हो और गाड़ी ना हो, तो बॉडी के साथ जहां गाड़ी जुड़ी है उसको हम गाड़ी कहते हैं। बॉडी ना भी हो तो चलेगा, गाड़ी है वो। बॉडी ना भी हो उसको गाड़ी ही कहते हैं। बिना बॉडी के भी गाड़ी दौड़ती है कि नहीं? व्यक्ति को वह गाड़ी ले जा सकती है कि नहीं? क्या पूछ रहे? ले जा सकती है कि नहीं? हाँ, ले जा सकती है ना, फिर बॉडी की क्या जरूरत है? ये कोई जरूरत नहीं कि मोक्ष जाने के लिए जैन कुल में ही हम पैदा हों। मिलिच खंड के लोग वहां से यहां आकर पुरुषार्थ करके मोक्ष जाते कि नहीं? अपने गौतम गंधर्व कहां जैन कुल में पैदा हुए थे? ब्राह्मण थे। और जो जैन कुल में पैदा हुए थे वो बॉडी, वो बॉडी, उनको बॉडी भी था परंतु गाड़ी नहीं थी। गाड़ी बाद में आ गई, बॉडी को उस पर बिठा दिया, सेट कर दिया, तब गाड़ी बन गई छाया वाली। तो मोक्ष जाने के लिए ऐसे ऐसे कुल में ही पैदा होने से मोक्ष होता है, ऐसा कोई नियम बना सकते हैं क्या? तो फिर ये जैन धर्म केवल जैनियों का है क्या? वो विश्व धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है, जीव धर्म है, विश्व धर्म यानी जीव धर्म। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम नहीं जीवम जयतु शासनम। जैनम काय को लगा रहे, ये क्यों जैनियों का है क्या फिर? हाँ, ये पाठांतर व्यापक है, जीवम जयतु शासनम। और जो जीव शासन है वही जैन शासन है, ये बाद में। वही जीव जब जीत लेता है अपने अपराधों को, दोषों को, तो वह जैनत्व को प्रकट करता है। तब जैनत्व को जब प्रकट करता है उसको जैन शासन कहते हैं। जैन शासन हासिल कर लिया अपने जीवन में, जैन शासन को बाद में हासिल करते हैं अपन। जन्म के साथ तो मिथ्या दृष्टि रहते हैं। जन्म के साथ क्या थे हम? लेकिन हमारा जैन कुल में तो पैदा हुए थे, कुल में जरूर पैदा हुए थे। गुणस्थान कौन सा था? पहला था, तो दोषी थे क्या निर्दोषी थे? दोषी थे। कौन सा दोष हटा लिया? हाँ, मिथ्यात्व को हटा लिया। तो मिथ्यात्व कहाँ था? ये बाहर था कि अंतरंग में था? अंतरंग में था। ये मिथ्यात्व क्या चीज है? अंधश्रद्धा का नाम मिथ्यात्व, ज्ञान की उल्टी परिणति का नाम मिथ्यात्व है। इस अंधश्रद्धा को जीतने पर जैनत्व प्रकट होता है और वो चतुर्थ गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर मिथ्यात्व दोष निकल जाता है, सम्यक तो गुण आ जाता है। इस सम्यक तो गुण को धर्म कहा है। ये तीनों गुण है ना आत्मा के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये गुण ही धर्म है, जीव के धर्म है ये। धर्म कह सकते हैं, कह सकते हैं। उस धर्म के कितने पर्यायवाची नाम है? शक्ति, जीव की शक्ति, जो अपनी शक्ति है वो। तो सम्यक तो अपनी शक्ति है, उस शक्ति को धर्म कहा है। वैभाविक शक्ति धर्म नहीं है, शक्ति तो है लेकिन वैभाविक है, विपरीत है, विपरीत शक्ति को धर्म नहीं कहा। वह विपरीत शक्ति अधर्म है और सही जो स्वभाव है, गुण है, वो गुण की जो शक्ति है वो धर्म है। तो जीव के गुण कहो, जीव की शक्ति कहो, जीव की यथार्थ शक्ति, जीव की यथार्थ शक्ति कहो, जीव का गुण कहो, और क्या कहो, निसर्ग कहो, जीव का स्वभाव, निसर्ग स्वभाव कहो, सभी एकार्थक हैं ये। तो ये गुण कहां से प्रकट हुआ? तो द्रव्य से प्रकट हुआ। ये गुण कहां से उत्पन्न हुआ? द्रव्य में उत्पन्न हुआ। तो ये गुण किस रूप में था? विभाव रूप में था। विभाव को पुरुषार्थ के माध्यम से लाना पड़ता है स्वभाव में, ये धार्मिक पुरुषार्थ है, ये ही धर्म पुरुषार्थ है। धर्म के, धर्म की ओर जाने का जो प्रयत्न है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। प्रयत्न ही पुरुषार्थ है। किस ओर जाना? विभाव से स्वभाव की ओर आने का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ है। और स्वभाव को प्राप्त कर लेना ये धर्म है। तो स्वभाव जब प्राप्त हो जाता है तो विजेता बन जाता है। विजेता बन गया किसका? विभाव का विजेता बन गया, दोष का विजेता बन गया, मिथ्यात्व का विजेता बन गया, तो जैनत्व प्रकट हो गया। जैन धर्म में सम्यक दर्शन को ही प्रथम सीढ़ी माना है। जब तक हमारी श्रद्धा यथार्थ नहीं बनती, तब तक अंधश्रद्धा ही कहलाती है। और इसलिए इसको ज्ञान की जरूरत है, विचार की जरूरत है, विचारक होने की आवश्यकता है। जब तक हम विचारक नहीं बनते तब तक कुछ काम होता नहीं है, कुछ भी काम नहीं होता। क्या कोई धार्मिक बाह्य क्रियाओं को करने मात्र से हम धार्मिक बन सकते? जैन धर्म ने कहा कि धर्म चाहते हो तो भगवान का दर्शन करो, कल्याण चाहते हो तो भगवान का दर्शन करो, ऐसा उपदेश है क्या? नहीं। देव दर्शन, देव पूजन, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपदान, छह कर्म है क्या? नहीं। उसमें देव पूजा प्रथम है। प्रथम देव पूजा करने वाला क्या दर्शन नहीं करता? तो पूजा के अंतर्गत देव दर्शन भी शामिल है। तो देव दर्शन करो। ये देव दर्शन किस लिए? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए तो है। भगवान सम्यक दृष्टि, वे गुणवान, गुणों की उपासना करते करते ही स्वयं की आत्मा भी गुणवान बन जाती है। क्या दोषवान की उपासना करते करते आत्मा भगवान बन जाती है? नहीं बन सकती। तो भगवान सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्रवान है भगवान। तीनों रत्न उनके पास है। उनका सम्यक दर्शन कौन सा सम्यक दर्शन है? क्षायिक है। उनका ज्ञान कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान है। उनका चारित्र कौन सा चारित्र है? यथाख्यात चारित्र। तो एक क्षायिक है, यथाख्यात चारित्र को धारण करने वाले आत्मा के पास कोई भी चारित्र विनाशक कर्म, उसका अवरोधक कर्म नहीं होता। हाँ, चारित्र का विनाशक कौन है? कर्म है। कौन सा कर्म है? चारित्र मोहनी कर्म है। 28 मोहनी कर्म में से भी 25 जो कर्म है वो चारित्र के, चारित्र गुण के घातक हैं। तो भगवान यथा क्या चारित्र वाले हैं? यथा क्या चारित्र वाले भगवान के पास क्या ये कर्म है? नहीं है। 12वें गुण स्थान वाले मुनियों के पास क्या ये कर्म है? उनके पास भी नहीं। और 11वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज के पास क्या ये कर्म है? नहीं है। 11वें गुण स्थान वाले के पास मुनि कर्म नहीं है। मोह 10वें गुण स्थान तक रहता है, ये कहना उदय की अपेक्षा से है। सत्ता की अपेक्षा से 11वें में है क्या? नहीं। तो अस्तित्व तो है। 12वें गुण स्थान में नहीं है, सत्ता भी नहीं और उदय भी नहीं। 11वें गुण स्थान में सत्ता है लेकिन उदय नहीं, और 10वें गुण स्थान में सत्ता भी है और उदय भी है। तो चारित्र घातक कर्म का उदय किस गुण स्थान तक है? 10वें गुण स्थान तक। तो ये चारित्र गुण का घात करता ही रहता है। जब उस घातक कर्म को हम या तो उपशमन करते हैं या तो क्षय करते हैं, तब 11वां या 12वां गुण स्थान प्रकट होता है। हाँ, अभी प्रशिक्षित नहीं है। है ना, दसवें गुण स्थान में उदय भी है और सत्ता भी है, ग्यारहवें गुण स्थान में उदय का अभाव है, सत्ता का अस्तित्व है, बारहवें गुण स्थान में उदय भी नहीं और सत्ता भी नहीं, तेरहवें गुण स्थान में उदय भी नहीं सत्ता भी नहीं, चौदहवें गुण स्थान में उदय भी नहीं सत्ता भी नहीं। तो चारित्र घातक जो कर्म है वे मोहिनी कर्म ही हैं। चारित्र को धर्म कहा है, उसको तो हमने धारण किया है, परंतु इस चारित्र गुण को नाश करने की शक्ति वाला कर्म हमारे पास हो तो नाश हो सकता है क्या? नहीं। घातक वस्तु अंदर बैठी हुई है और उदय में भी आ रही है, तो चारित्र में दोष लगाएगा ही वो। तो देखो चारित्र का घात किस गुण स्थान तक हो रहा है, दसवें गुण स्थान तक हो रहा है। उदय में आए बिना चारित्र का घात नहीं होता, कर्म उदय में आकर के चारित्र का नाश करता है। तो उदय कहाँ तक है? दसवें तक है। तो दसवें तक चारित्र गुण का घात होता है, तो दसवें गुण स्थान में कौन सा चारित्र नष्ट हो रहा है, घात हो रहा है? दसवें गुण स्थान में तो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है, सूक्ष्म सांप्राय संयम है। तो संयम मार्गना के कितने भेद हैं, 24 थाना में जब पड़े थे याद हो तो गिनो उनको, असंयम, संयमासंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथा ख्यात, सात हैं। संयम मार्गना के सात भेद हैं। इसमें असंयम तो संयम नहीं कहलाता, पर मार्गना है इसलिए उसको भी स्वीकार किया है। असंयम मार्गना हो तो ही वह संयम की ओर बढ़ सकता है, जिसके पास असंयम ही नहीं वो क्या संयम की ओर बढ़ेगा, है कि नहीं, वो क्या संयम की ओर बढ़ेगा। और पहले गुण स्थान से लेकर चौदहवें गुण स्थान तक असंयम भी है और संयम भी है। संयम छठे गुण स्थान से लेकर चौदहवें गुण स्थान तक है। ये बच्चों को क्यों लाए, हाँ अक्रवे, हाँ आता है, आता है उदय। नहीं देखो ऐसा होता है, दसवें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का उदय है और इसको दबाकर उपशमन कर ग्यारहवें गुण स्थान में जाता है। पुरुषार्थ दो प्रकार का यहां होता है, दबाकर जाने का और इसको हटाकर जाने का। मोहिनी कर्म को सर्वथा हटाकर भी ऊपर जा सकता है और दबा करके भी जा सकता है। दबा कर जाएगा तो ग्यारहवें गुण स्थान में जाएगा, हटा करके जाएगा तो सीधा ही बारहवें गुण स्थान में जाएगा, ग्यारहवें में नहीं जाएगा वो। हटाएगा तो बारहवा ही गुण स्थान मिलेगा और दबाएगा तो ग्यारहवें गुण स्थान में जाएगा। और दबा करके कब तक रखेगा, केवल अंतर्मुहूर्त। और दबा करके जो अंतर्मुहूर्त तक रख रखा है उसके बाद क्या होना है, मोहिनी कर्म का उदय आना है कि क्षय होना है? उदय में आएगा ही, आ सकता भी नहीं, आएगा ही कितने समय बाद, एक अंतर्मुहूर्त बाद आएगा ही, या सम्यक एकांत है आएगा ही। नहीं भी आएगा कहेंगे तो फिर आगे भी जा सकता है कि फिर ग्यारहवें से बारहवें में भी जा सकता है क्या, ऐसा कल्पना करनी पड़ेगी। आएगा उदय में, आएगा ही उदय में आया तो कौन सा गुणस्थान हुआ, दसवां। तो कब तक रहा ग्यारहवें में, अंतर्मुहूर्त तक। उदय कब आया, अंतर्मुहूर्त बाद। तो जब से उदय काल प्रारंभ हुआ तब से दसवां गुण स्थान, जब तक उदय काल नहीं आया तब तक ग्यारहवां गुण स्थान, उसका काल केवल अंतर्मुहूर्त, फिर भी वह आत्मा वीतराग है। वीतराग, वीतराग छद्मस्त कहा उसको, वीतराग छद्मस्त, वीतराग छद्मस्त के दो भेद, ग्यारहवें गुणस्थान वाले और बारहवें गुणस्थान वाले, वहां हटा करके आया है, यहां दबा करके आया है। हटाने वाले जैन अलग हैं, जैन है ना, यहां जैन मुनि है, जैन मुनि जीतने वाले, मुनि जीतने वाले, हटा करके जाने वाले जैन अलग हैं और दबा करके जाने वाले जैन अलग हैं। इसमें कौन अच्छे हैं? दबाने वाले अच्छे हैं, विषय दब जाएगा ये। हाँ, दबाने वाले बारहवें गुणस्थान में जाएंगे, हटाने वाले श्रेष्ठ हैं, दबाने वाले की अपेक्षा हटाने वाले श्रेष्ठ हैं, क्योंकि दबाने वाले तो पुनः नीचे आएंगे, शिखर पर चढ़े और नीचे आना ये श्रेष्ठ कहलाएगा क्या? उत्कृष्ट चारित्र पा लिया यथा क्या चारित्र, और पुनः सूक्ष्म सांप्राय चारित्र पर आना पड़ रहा है, नीचे के चारित्र पर आना पड़ रहा है, तो ये किस कारण से आना पड़ रहा है? मोहिनी कर्म के विजेता नहीं हो पाए। सही विजेता तो हटाने से है, सही विजेता बनाना हटाने से है क्या दबाने से है? मोहिनी कर्म को हमको हटाना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। दबाना कैसे होता है एक उदाहरण दे दूं। कल के दिन अष्टमी है, मान लो आपका विचार आता है कि कल उपवास करें, आत्मा तो कह रहा है कि उपवास करें, मन कह रहा है कि नहीं भोजन करें, हम दुविधा में रहते हैं। आत्मा का पक्ष उपवास करने का है और मन का पक्ष भोजन करने का, मन चंचल है ना, उस मन की चंचलता को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक उपवास करने का जो कार्य है वह कार्य निर्विघ्न निर्दोष संपन्न नहीं होगा। ऐसा भी कभी होता है, मन में करने के भाव तो नहीं थे लेकिन फिर भी कर लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, वहां पर जाने के बाद उपवास करने के बाद इच्छा तो नहीं थी लेकिन क्यों किया, ऐसा आता है, करना नहीं चाहिए था क्यों किया, ऐसा आता है कि नहीं? तो ये मोहिनी कर्म को, आशा को आपने दबाया है, दबा करके वहां चले गए उस कार्य पर, उपवास करने के कार्य पर। यहां पर संकल्प पूर्वक मन को जीत करके उपवास कर लेते तो ये परिणाम नहीं होते उपवास के दिन। हां, आशा पर विजय प्राप्त करके, नहीं कल के दिन बिल्कुल खाना ही नहीं, हे मन तुझको मानना पड़ेगा, आत्मा मन को मनवा करके साथ लेकर के उपवास का संकल्प साथ लेकर के उपवास कर लेता तो दूसरे दिन कभी भी क्यों किया इस प्रकार के परिणाम नहीं आ सकते। तो दबाना अलग है, हाँ, मन को जब तक कंट्रोल में नहीं लेता आत्मा तब तक आशा दब नहीं सकती। मन को साथ लेना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। पहला पाठ का नाम था जैन धर्म, जीतने वालों के धर्म को जैन धर्म कहते हैं, और यह जैन धर्म सर्व प्राणी के लिए समान रूप से स्वीकार करने योग्य है। ये किसी वर्ग का धर्म नहीं है, किसी एक मानव वर्ग का धर्म हो ऐसी बात नहीं है, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए यह धर्म है, क्योंकि सभी प्राणी संसारी हैं, सभी दोषी हैं, सभी अपराधी हैं। अपने अपने अपराधों को जीतना ये सभी संसारी प्राणियों के पास भाव रहता है। भाव तो रहते हैं कि मैं दोषवान नहीं रहूं, गुणवान बन जाऊं, ये जो भाव है सभी जीवों में रहता है, मैं अच्छा बन जाऊं, ये किसके पास नहीं है। तो अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा बनते जाने का नाम जैन धर्म है। आप अपने जीवन में अच्छा ही अच्छा बनते जाओ, हर क्षेत्र में अच्छा बन जाओ, तो इसका नाम जैन धर्म है। देव दर्शन किसका उपाय है? जीतने का उपाय। जिन बिंब का दर्शन करके किस दोष को जीतते हैं? मिथ्यात्व को जीतते, सात प्रकृतियों को जीतते, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, सात प्रकृतियों को जीतते। ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य, मेन ध्येय है कि सात कर्मों को जीतने के लिए ही मैं देवदर्शन करता हूं। और फिर देवदर्शन के बाद पूजन क्यों करता हूं? देवदर्शन अलग बात है, पूजन अलग बात है। पूजन क्यों करता हूं? पूजन मैं चारित्र की प्राप्ति के लिए करता हूं, दर्शन तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए करता हूं, सात प्रकृतियों को हटाने के लिए करता हूं। सात प्रकृतियों के हटाने के लिए जो विशुद्ध भाव चाहिए, उन विशुद्धियों की प्राप्ति के लिए करता हूं। क्षोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोगी लब्धि, देशना लब्धि और करण लब्धि। इन पांच लब्धियों में जो आत्मा के विशुद्ध परिणाम है, उन परिणामों को पाने के लिए करता हूं देव दर्शन। और पूजन क्यों करता हूं? चारित्र की प्राप्ति के लिए। पूजन में क्या करता हूं? भगवान के गुणों का बखान करता हूं। क्यों करता हूं? उनके गुणों का बखान करने से जितनी देर मैं वहां बैठकर गुणों की स्तुति करता हूं पूजन के माध्यम से, तो एक घंटा निकल गया हमारा, तो एक घंटे तक हमारा मन पूरी तरह से शुभ रहा। अशुभ भावों से बचने के लिए और शुभ भाव में रहने के लिए मैं पूजन करता हूं, और अशुभ भाव के कारण चारित्र मोहिनी कर्म है जो चारित्र के घातक हैं, और शुभ भावों की उत्पत्ति में कारण पूजन है। मैं पूजन इसलिए करता हूं, हे भगवान आपके दर्शन से मुझे सम्यक दर्शन रूपी धर्म का लाभ हो, और पूजन से चारित्र का लाभ हो, इस तरह से मैं पूजन करते समय दर्शन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करता हूं, और दर्शन प्राप्त करता हूं तो ज्ञान तो मुझे ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान, सम्यक ज्ञान ऑटोमेटिक आता है, वो तो आपको गिफ्ट में मिलता है ज्ञान। ज्ञान की आराधना करनी नहीं होती, ज्ञान के लिए कोई साधना करनी नहीं होती, साधना तो सम्यक्त्व में होता है, सम्यक्त्व के लिए साधना करनी पड़ती। कोई भी ज्ञान के लिए साधना करनी आवश्यक नहीं है, ज्ञान ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। आपको साधने की वस्तु दो ही है, दर्शन और चारित्र। ज्ञान को साधना नहीं है, दर्शन और चारित्र को साधना। प्राप्तव्य दो हैं, प्राप्तव्य चीज दो ही हैं, दर्शन और ज्ञान। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पांच लब्धि चाहिए, ऐसा कहीं जैनागम में लिखा है? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पंच लब्धि चाहिए, सोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, करण लब्धि, देशना लब्धि। ये लब्धियां जो है ना, ये किसके साधन है? ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए है क्या? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन ज्ञान अपने आप मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, मिल रहा, ऑटोमेटिक मिल रहा है। चारित्र ऑटोमेटिक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, उसकी साधना और करनी पड़ेगी। अभी तो हमने दर्शन की साधना की, सम्यक दर्शन की साधना की, तो ज्ञान ऑटोमेटिक मिल गया। अब मुझे चारित्र चाहिए, वो ऑटोमेटिक क्यों नहीं मिल रहा है? सम्यक दर्शन के साथ चारित्र ऑटोमेटिक मिलेगा क्या? इसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। तो चारित्र की प्राप्ति के लिए क्या करनी पड़ेगी? साधना। तो अशुभ से बचना और शुभ में जाना, ये प्राप्त करना पड़ेगा। तो भगवान का पूजन ये चारित्र का उपाय है। भगवान को भजते भजते, गुणगान करते करते हम शुभ परिणाम में रहे कि अशुभ परिणाम में रह गए? शुभ परिणाम। शुभ परिणामों से क्या मिला आपको? चारित्र मिला ना? उतने समय तक अशुभ से बच गए ना? अशुभ से बचना ये चारित्र का अभ्यास कहो या चारित्र कहो, एक ही बात है। हालांकि पूजक, पूजन करने वाला श्रावक हो और वह अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला हो तो वह अभ्यासु कहलाता है, चारित्र का अभ्यासु। ध्यान में ले लेना क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है और वो भी पूजन करने मंदिर गया है, दर्शन तो कर लिया, ये दर्शन क्यों किया? पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त करना है क्या? नहीं करना है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है वो हो सकता है उपशम सम्यक दर्शन हो, क्षौक्षम सम्यक दर्शन हो, क्षायिक तो नहीं है ना? नहीं है। जो क्षौक्षम सम्यक दृष्टि है वह भगवान का दर्शन करके कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाह रहा है? क्षायिक। क्षायोपशम को क्षायिक के रूप में कन्वर्ट करने के लिए देव दर्शन कर रहा है। देखो नई नई चर्चाएं होने लगी, वो बातें खुलने लगी अपने आप। जिनके पास क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन है, हे भगवान मुझे क्षायिक सम्यक दर्शन चाहिए इसलिए दर्शन करने आया हूं, और वह क्षायिक सम्यक दर्शन आपके चरण सानिध्य के बिना होता नहीं है ऐसा आपकी वाणी है इसलिए चरणों में आया हूं, केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल के बिना क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये आपने ही कहा है इसलिए हम दौड़ के आए हैं। दर्शन भी करेंगे और पूजन भी करेंगे। दर्शन इसलिए करेंगे कि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो, और पूजन इसलिए करेंगे क्षायिक चारित्र प्राप्त हो। और हम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, हम आपके सानिध्य में आए, हम सत्संग कर रहे हैं। इस सत्संग के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस सत्संग के बिना तो हमारा धर्म विकसित नहीं हो सकता, कुंठित हो जाएगा और मिट भी सकता है। क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन हमारा मिट भी सकता है, ये मिटे नहीं, इसमें उत्तर उत्तर विशुद्धि बढ़ते रहे, इस कारण से आपके दर्शन के लिए हम आए हैं। तो भगवान कहते हैं क्या तुम्हें केवल ज्ञान नहीं चाहिए? चारित्र की साधना के लिए आए हो और सम्यक दर्शन की साधने के लिए आए हो तो कि ज्ञान नहीं चाहिए? हे भगवान, जब मेरा सम्यक दर्शन शायिक हो जाएगा और मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक चारित्र क्षायिक बन जाएगा। तो ज्ञान को तो क्षायिक होना ही पड़ेगा अंतर्मूर्त के अंदर। ये सिद्धांत है, ये जीव सिद्धांत है और उसी की चर्चा है। जीव सिद्धांत चर्चा, दो को साधना होता है, सम्यक दर्शन को क्षायिक बनाए बिना श्रेणी चढ़ सकता है क्या? बोलो, नहीं चढ़ सकता, श्रेणी नहीं चढ़ सकता। चारित्र को क्षायिक किए बिना क्या श्रेणी चढ़ सकता है क्या? बोलो, नहीं चढ़ सकता। और दर्शन को चारित्र को क्षायिक क्यों बना रहे हैं विचारो, दर्शन को और चारित्र को क्षायिक क्यों बनाया जा रहा है? क्षायिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, क्षायिक ज्ञान किस गुणस्थान में प्रकट होगा? बारहवें गुण, तेरहवें में, तेरहवें में क्षायिक ज्ञान प्रकट होता है। तो आपके पास क्या चाहिए? क्षायिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आपके पास क्या चाहिए? क्षायिक सम्यक दर्शन रूपी धर्म चाहिए और क्षायिक चारित्र रूपी धर्म चाहिए। ये दो धर्म चाहिए। ये दोनों यदि हैं तो अंतर मुहूर्त के भीतर नियम से अंतर मुहूर्त के भीतर नियम से आपको क्षायिक ज्ञान गिफ्ट में मिलेगा। प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, केवल काम ही करना है, कर्तव्य करना है। क्या कर्तव्य करना है? सम्यक दर्शन को क्षायिक बनाना है और सम्यक चारित्र को क्षायिक बनाना है। क्षायिक ज्ञान ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा अंतर्मुहूर्त के भीतर, वो ऑटोमेटिक आने वाला है, वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, नियम से आएगा। क्षायिक चारित्र हो गया तो हो गया ना, क्षयी हो गया पूरा, मोहनी कर्म। वो मोहनी कर्म का क्षय दसवें में होता है, तेरहवें में कहां मोहनी कर्म की चर्चा कर रहे हैं? वो तो मोहनी कर्म से रहित है। मोहनी कर्म का क्षय किस गुणस्थान में होता है? इसको पहले ध्यान में रखो, दसवें गुणस्थान में होता है। मोहनी कर्म का उपशमन किस गुणस्थान में होता है? दसवें में उपशमन करता है, ग्यारहवें में जाता है। उपशमन करने का जो कार्य है किस कहां होगा? दसवें में ही होगा। हाँ, उपशमन कार्य पूर्ण हो गया तो ग्यारहवें गुणस्थान का समय प्रारंभ हो गया और वह अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगा। अंतर्मुहूर्त काल के उपरांत नीचे गिरना पड़ता है। हाँ, ये व्यवस्था पहले ध्यान में रखो। दसवें में दो कार्य होते हैं, उपशमन का कार्य भी होता है और क्षय का कार्य भी होता है। क्षय यानी संपूर्ण नाश, उपशमन यानी नाश नहीं, दबाना, अंदर है उसको दबाना। स्प्रिंग को दबाया तो जब छोड़ोगे उठ के आ जाएगा, स्प्रिंग को हटाया तो दबाने की जरूरत नहीं, स्प्रिंग ही नहीं है तो फिर वो उठेगा भी नहीं। ये अंतर है। ये कार्य दबाने का और हटाने का किस गुणस्थान में होता है? दसवें गुणस्थान में होता है। ऐसा दसवें गुणस्थान में हटाने के लिए वहां तक प्रयत्न करना पड़ता है। सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान में ही प्रकट हो गया। हटाने के बाद डायरेक्ट बारहवें में जाता है। हाँ, देखो तत्व चर्चा में कैसे कैसे दिमाग दौड़ने लगा, काफी क्वेश्चन आते हैं और ऐसी तत्व चर्चा करनी चाहिए, तब आत्मा निर्मल 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 होती हुई जाती है। और अपने आप अंधश्रद्धाएं दूर हो जाती हैं, चारित्रिक ओर अपने आप आत्मा बढ़ने लगती है, ज्ञान बढ़ता जाता है, विकसित होता है। ज्ञान की पवित्रता से, ज्ञान की साधना से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों ऑटोमेटिक प्राप्त होते हैं तत्व ज्ञान की साधना से। फिर क्षायिक ज्ञान की साधना करनी नहीं पड़ती, तत्व ज्ञान का प्रयत्न करना पड़ता। देखो, जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ये दोनों प्राप्त न हो, तब तक तत्वाराधना करो ये कहा है। हाँ, तब तक तत्व की आराधना मत छोड़ो, तत्वाभ्यास मत छोड़ो, तत्व का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, चर्चा करो, प्रवचन सुनो, ये कहा है। ये सब किस लिए? सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन दो की प्राप्ति के लिए। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करो, ऐसा कहीं नहीं कहा है। केवल ज्ञान तो ऑटोमेटिक मिलेगा, चिंता मत करो। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दो को साथ में ले लो, क्षायिक ज्ञान ऑटोमेटिक आएगा। कैसा है जैन धर्म का मार्ग? बढ़िया है, क्या मजेदार है। इसकी चर्चा कितनी भी करे खत्म ही नहीं होती, लेकिन समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, आ रहा है, आएगा आएगा। आज नहीं आ रहा है तो कल तो आएगा निश्चित है, और कल भी नहीं आया तो परसों के दिन तो गारंटी है आता जाएगा। एक साथ ज्ञान नहीं होगा, जैसे जैसे हम ध्यान से सुनेंगे, करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, बढ़ता जाएगा वो। स्वाध्याय ही ज्यादा करना चाहिए, तत्व चर्चा ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप ये धर्म ही नहीं है। ये दो धर्म की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, होता है। हाँ, फिर भी नीचे आते हैं, दबाया है इसलिए नीचे आएंगे, स्प्रिंग है नीचे, और अंतर्मूर्त के बाद वो उठेगा। स्प्रिंग को हटा करके जाना चाहिए, कर्म रूपी स्प्रिंग दबा हुआ है तो उठेगा, उस स्प्रिंग को ही कैंसिल करना चाहिए अंदर से, तो बारहवें में जाएगा। बारहवें में भी यथा क्या चारित्र है और ग्यारहवें में भी यथा क्या चारित्र है, दोनों जगह यथा क्या चारित्र। परंतु यह यथा क्या चारित्र यथाख्यात, ऐसा नाम क्यों पड़ा है इसका? बालक के समान निर्विकार, जैसे बालक राग द्वेष नहीं रखता किसी से। एक बालक के चेहरे को देख लो और एक बड़े के चेहरे को देख लो, भीतरा बालक को देखने से भगवान को देख रहे हो ऐसा लगेगा आपको, पर बड़े को देखने से एक संसारी को देख रहे हैं ऐसा लगेगा, एक संसारी जीव को देख रहे हैं ऐसा लगेगा। यथाख्यात यानी यथाजात बालक के समान चारित्र, यानी निर्ग्रंथ, बाहर से भी निर्ग्रंथ और अंतरंग से भी निर्ग्रंथ, उपशमन करने से निर्ग्रंथ या तो क्षय करने से निर्ग्रंथ। ये जो दशा प्रकट होती है उपशमन वाली और क्षयिक वाली, ये यथाख्यात यथाजात, यथाख्यात एक ही बात है, यथाजात यथाख्यात रूप, अंतरंग का रूप और बहिरंग रूप एक है। जैसा है वैसा, जैसा कहा है वैसा, जैसा आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है वैसा है। हाँ,
देखने में तो वैसा ही है,
वैसे ही है,
लेकिन फर्क है, वो बालक है, हम बड़े क्षय समय दिखते हैं,
लेकिन यथा क्या चरित्र अभी नहीं है हमारे पास,
हो जाएगा,
हो जाएगा, आप भावना भाएंगे तो होगा या हम कुछ प्रयत्न करेंगे तो होगा। सभी लोग भावना भाव यथा क्या चरित्र महाराज को हो जाए हो जाए हो जाए, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हमने सुबह बताया था धर्म का कार्य स्वयं करने से ही, पुण्य को स्वयं करने से ही पुण्य का फल मिलता है। पुण्य के फल को हम मांगने जाते हैं, हे देव मुझे वो चाहिए, हे देव मुझे ये चाहिए। अभाव की पूर्ति के लिए भगवान के पास हम पुण्य के फल को मांगने के लिए जाते हैं। पुण्य कमाया नहीं और पुण्य का फल दूसरे से मांग रहे हैं, तो दूसरा दे सकता है क्या? जैसे आप भावना भाने से मैं कहीं यथा क्या चरित्रवान नहीं बन सकता, और आपसे मैं भी कहूं यदि आपको देवता कोई सुख दुख देता है, पुण्य के फल को देता है या पाप के फल को देता है, भगवान ही दुखी बनाते हैं और भगवान ही सुखी बनाते हैं, ऐसी धारणा यदि है तो वो अंधश्रद्धा है, अंध धारणा है। स्वयं की सोच, स्वयं शुभ भाव बनाएंगे तो पुण्य बंद होगा, उस पुण्य का जो फल है वो धन संपत्ति बाहर वाली है। पुण्य के फल से मोक्ष मिलेगा क्या? बोलो, मोक्ष पुण्य का फल है क्या? बोलो। तो पुण्य का फल क्या है? भौतिक सुख है। पुण्य का उदय, पुण्य जड़ वस्तु है क्या? नहीं। पुद्गल कर्म है क्या? नहीं। वो पुद्गल कर्म है। पुद्गल कर्म का उदय पुद्गल को ही दिलाता है। देखो, पुद्गल कर्म का उदय पुद्गल को ही दिलाता है और हम चारित्रवान बन गए, सभी पंच पापों को त्याग दिया, परिग्रह सब त्याग करके चारित्रवान बन गए। चारित्र रूप भाव ये शुभ भाव है, शुभ भाव है। ये शुभ भाव आत्मा के हैं या कर्म के हैं? हाँ, ये आत्मा के हैं। और ये शुभ भाव मोक्ष देगा क्या? नहीं देगा। ये शुभ भाव मोक्ष देगा क्या? नहीं देगा। सोच के बताना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत होगी। सोचते सोचते यहाँ पसीना आ सकता है। ठीक है, हम मानते हैं शुद्ध से ही मोक्ष मिलने वाला है, परंतु शुभ भाव किस तरह से मोक्ष का कारण है? शुभ भाव अगर मोक्ष का कारण नहीं है ये मानोगे तो चारित्र अनिवार्य नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा, ऐसा होगा। चारित्र के बिना शुभ भाव नहीं होते, है ना? तो चारित्र के बिना डायरेक्ट आप शुद्ध में कैसे जाओगे? चारित्र के बिना नहीं जा सकता। और चारित्र ले लिया, पंच पापों से बच गए, परिग्रह से बच गए, तो ये शुभ भाव हो गया। ये शुभ भाव को प्राप्त किए बिना तो शुद्ध में तो आप जा ही नहीं सकते। हाँ, स्टेप है शुद्ध, यदि साक्षात सीढ़ी है केवल ज्ञान पाने का, मोक्ष पाने का, यदि आप उसको साक्षात सीढ़ी मानते हैं तो शुद्ध भाव को भी साधने का शुभ भाव वो नीचे की सीढ़ी है, वो नीचे की सीढ़ी है। कंपल्सरी उस सीढ़ी पर आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट शुद्ध कैसे हो जाएगा? असंभव। जितने जीव आज तक मोक्ष गए हैं उन्होंने शुभ को साधे बिना तो मोक्ष शुद्ध को प्राप्त किया ही नहीं। जब मुनि महाराज दिगंबर दीक्षा लेते हैं, स्टेज पर होते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, शिष्य दीक्षा लेता है और गुरु के समक्ष शिष्य 28 मूल गुणों को संकल्प करता है। हे भगवान, मैं, हे आचार्य परमेष्टि, आप दीक्षा, आप गुरु हैं, दीक्षा दे रहे हैं, मैं दीक्षा ले रहा हूं। और दीक्षा का तात्पर्य क्या? बहिरंग दस परिग्रह से मुक्त होना और उन परिग्रहों के प्रति होने वाले रागादि भाव जो थे उन रागादि भावों से भी मुक्त होना, संकल्प पूर्वक होना चाहिए। देखो किस पूर्वक? संकल्प पूर्वक त्याग होना चाहिए। और संकल्प करते समय कौन से भाव हैं ये पूछ रहे हैं हम वही तो कह रहे हैं ना, उस सीढ़ी पर आप गए बिना शुद्ध की उपलब्धि नहीं और शुद्ध को उपलब्ध के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं। हे भगवान, मैं पंच पापों को त्याग करता हूँ, पहला संकल्प तो लेता है। ऐसा संकल्प किए बिना ही कौन मोक्ष गए हैं? ये संकल्प रूप प्रवृत्ति शुभोपयोग की प्रवृत्ति है। हम शुभोपयोग को धारण करके ही शुद्धोपयोग पर जाते हैं। ये रास्ता है, ये सही रास्ता है। हम ये पूछ रहे हैं कि चारित्र व्यर्थ है क्या? परंपरा से कारण मानना ही पड़ेगा। चारित्र व्यर्थ है क्या? चारित्र नहीं लोगे और चतुर्थ गुण स्थान में ही बैठकर शुद्ध उपयोग की अनुभूति करोगे और ये कहते हुए क्या कहते हुए कि चारित्र तो शुभ भाव रूप है और इससे तो केवल पुण्य का बंध होता है और इसकी मुझे अनिवार्यता नहीं है, ये तो आश्रव तत्व है, ये तो बंध तत्व है, इस तत्व की हमको जरूरत नहीं है, हम इस चारित्र के बिना ही रहेंगे चौथे गुण स्थान में। तो अविरत सम्यक दृष्टि बन करके रहो तो वहीं रहेगा, मोक्ष मिलेगा क्या? और ये धारणा भी गलत है कि ये चारित्र जो है ये आश्रव तत्व है, ये बंद तत्व है कह करके उसकी उपेक्षा करना भी गलती है, अपराध है, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ऐसा परिणाम हो गए हैं तो ऐसे परिणाम भी हो गए हैं तो प्रायश्चित लेना पड़ता है, क्योंकि गलत परिणाम हुए। चारित्र के प्रति उपेक्षा बुद्धि जागृत हो गई और चारित्र धर्म कहलाता है, व्यवहार धर्म है। वो व्यवहार धर्म को स्वीकार किए बिना निश्चय धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है, ये जीव सिद्धांत है और इस जीव सिद्धांत की यहाँ चर्चा है। हाँ, चौथे से क्यों नहीं मोक्ष होगा फिर? चारित्र को अगर बंध और आश्रव तत्व का कारण मानेंगे, सर्वथा उसको उपेक्षा करके हम चौथे में ही बैठ जाएंगे, तो चौथे से भी मोक्ष सिद्ध होना चाहिए। और मोक्ष सिद्ध आप करके बताओ तो हम भी आपके पीछे चलते हैं। बहुत आसान है, चारित्र के बिना भी मोक्ष मिल रहा है, कितना सस्ता है धर्म। हाँ,
और मनुष्य भाव के लिए एक चौदह गुण स्थान है।
हाँ,
तो नियम से मनुष्य मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा? यदि मनुष्य के लिए चौदह गुण स्थान की व्यवस्था की है,
हाँ,
तो मनुष्य अपना पुरुषार्थ के साथ मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा?
हाँ,
नहीं,
चौदह गुणस्थान को पार किए बिना तो मोक्ष होता ही नहीं किसी जीव को। देखो, पहले गुणस्थान से चौदह गुणस्थान तक जीव को संसारी कहा है। क्या कहा है? संसारी। अरहंत भगवान भी संसारी हैं? आप घबरा जाएंगे, अरहंत भगवान कैसे संसारी, तो भगवान है। नहीं, आगम में लिखा है अरहंत भगवान भी संसारी हैं। संसारी किस अपेक्षा से, ये बात अलग है। आप जैसे संसारी नहीं कि घर में रहते हैं और पंच पाप करते हैं, ऐसे संसारी नहीं। संसारी इस अपेक्षा से कि उन्होंने अभी परद्रव्य से अपने आप को अलग नहीं किया है। शरीर परद्रव्य है, अंतरंग आत्मा में आघाती कर्म चार और बैठे हुए हैं, इन परद्रव्यों के संपर्क में अरहंत भगवान हैं, इसलिए संसारी हैं। जब तक संपर्क संयोग होता रहता है हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ, तब तक आत्मा को संसारी कहा है। और चौदहवें गुणस्थान में भी शरीर है, चौदहवें गुणस्थान में भी आघाती कर्म है, तेरहवें गुणस्थान में भी आघाती कर्म है। जो आघाती कर्म चौदहवें में है उनको नाश किए बिना, उनसे अलग हुए बिना आत्मा मोक्ष नहीं जाता। और जब कर्म अलग होंगे तो शरीर तो छूट ही जाता है। कर्म अलग हो गया तो शरीर मिलेगा नहीं, फिर शरीर यहीं छूट जाता है। जैसे ये शरीर कब तक टिका रहता है? जब तक आयु कर्म है। आप कितने साल के जीने वाले हैं? 70-80 साल के जीने वाले हैं, तो आयु कर्म आपको साथ दे रहा है। आयु कर्म के साथ आपकी आत्मा का जब तक संपर्क है तब तक ये शरीर यहाँ रहता है। किंतु अरहंत भगवान, चौदहवें गुणस्थान वाले अरहंत भगवान, आघाती कर्मों को नाश करते समय आयु कर्म को नाश करने से पहले पहले, देखो कितने ही कर्मों को नाश कर चुके होते हैं पीछे के गुणस्थानों में, ठीक है? पीछे के गुणस्थानों में चढ़ते 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 कितने ही कर्मों को नाश कर चुके होते, परंतु चौदहवें गुणस्थान में जाने के बाद आयु कर्म को, वेदनी कर्म को, गोत्र कर्म को और नाम कर्म को, इन चारों को एक साथ जीत लेते। नाम कर्म से शरीर मिला है, आयु कर्म से इस शरीर में जीने का समय मिल चुका है 70-80 साल का, और गोत्र कर्म से हम उच्च गोत्र का अनुभव कर रहे हैं, और वेदनी कर्म के उदय से सुख की अनुभूति कर रहे हैं, साता की अनुभूति कर रहे हैं। तो ये सब कर्म जनित सुख दुख हैं। केवल ज्ञान होते हुए भी, केवल ज्ञान होते हुए भी शरीर है, और शरीर होते हुए भी केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानी के पास भी चार आघाती कर्म हैं। देखो सिद्ध भगवान के पास तो केवल ज्ञान होता ही है, मोक्ष जाने के बाद भी केवल ज्ञान छूटेगा नहीं, केवल ज्ञान तो हमेशा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। क्षायिक ज्ञान, ये तीनों क्षायिक बन गए। चारित्र क्षायिक कहाँ बन गया? आठवें गुणस्थान में। हाँ, क्षायिक चारित्र की प्राप्ति किस गुणस्थान से प्राप्त होता है? आठवें से। और क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति किस गुणस्थान से शुरुआत होता है? चौथे से। चौथे में हो या ना हो, ऊपर के गुणस्थानों में भी हो सकता है, लेकिन नीचे, अधिक से अधिक नीचे विचार करेंगे तो चौथे गुणस्थान से क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता, और क्षायिक चारित्र चौथे में नहीं होता, पंचम में नहीं होता, छठे में नहीं होता, सातवें में नहीं होता, आठवें में प्रवेश करने के बाद क्षायिक होगा। यहां पर दो प्रकार के चारित्र की उत्पत्ति बताई गई है। अगर आप कर्मों को क्षय करके निकलते हैं तो क्षायिक, उपशमन करके निकलते हैं तो औपशमिक चारित्र प्राप्त होता है। चारित्र में भी दो प्रकार है, औपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र। औपशमिक चारित्र अगर प्रकट कर लिया आपने किस गुणस्थान में? आठवें गुणस्थान में, तो आठवें से नवे, नवे से दसवें, दसवें से ग्यारहवें गुणस्थान तक जाएंगे, वापस पुनः आएंगे नियम से, एक एक गुणस्थान गिरते गिरते क्रमशः आएंगे। औपशमिक चारित्र प्रकट कर लिया तो, क्षायिक चारित्र प्रकट कर लिया तो आठवें से नवे, नवे से दसवें, दसवें से बारहवें में चले जाएंगे। ये ऐसा रास्ता है मोक्ष मार्ग का। हाँ, ग्यारहवां छूट जाएगा। वहां जाने से पहले यहीं से इसका ज्ञान हो, नहीं तो भटक जाएंगे वहां जाकर। रास्ता नहीं मिलेगा वहां। हाँ, बारहवें में जाना था और ग्यारहवें में चढ़ गए। ऐसा ना हो। लेकिन ग्यारहवीं में जाने का जो निश्चय होता है, निर्णय होता है, निश्चित होता है, वो आठवीं में ही होता है। चारित्र निर्णय करेगा। आठवीं में जाकर के अगर आपने औपशमिक चारित्र प्रकट किया तो गारंटी निश्चित हो गया, यहीं से आप कहां जाएंगे, ग्यारहवें तक ही जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, लौट के आना है आपको अंतर्मूर्त के बाद वापस इसी गुणस्थान में। उपशम सम्यक दृष्टि हो तो नहीं, नहीं हम चारित्र की बात कह रहे हैं कि ग्यारहवें में ही जाएगा, ये निर्णय कहां से हुआ, आठवें से हुआ, ये बता रहे हैं। ग्यारहवें में ही जाएगा ये निर्णय, आठवें में ही पता चलता अपने को। अपने पास यदि औपशमिक चारित्र है तो ग्यारहवें गुणस्थान का टिकट खरीदा है, ये ग्यारहवें गुणस्थान का ही टिकट है औपशमिक चारित्र। और क्षायिक चारित्र ये बारहवें गुणस्थान का टिकट है, और इस टिकट को जाकर के बारहवें गुणस्थान को सौंप देंगे, तुमको बारहवां गुणस्थान केवल ज्ञान को सौंप देता है अंतर्मूर्त के अंदर। ऊपर नीचे कितनी बार कर सकता है, हाँ ठीक है, कहाँ, ग्यारहवें गुणस्थान तक, एक मनुष्य पर्याय में दो बार कर सकता है, और मोक्ष जाने तक के काल में कितनी कितनी जितने भव में मोक्ष जाना हो वह चार बार कर सकता है, चार बार। तो चार भव में एक एक बार भी कर सकता है, और एक भव में दो बार भी चढ़ सकता है, दो बार भी चढ़ सकता है, दो बार नहीं चढ़े तो एक बार भी चढ़ सकता है, और दूसरी मनुष्य भव में एक बार और चढ़ेगा, तीसरे में एक बार और चढ़ेगा, चौथे में एक बार और चढ़ेगा, लेकिन एक भव में चार बार या तीन बार नहीं चढ़ता, दो ही बार चढ़ता। ये जीव सिद्धांत है, उसी की चर्चा है। क्यों रखा गया, किसी ने रखा नहीं है। किस वजह से किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये किसी ने बनाया नहीं ये सिद्धांत, ये नेचुरली जो जीव अपने परिणामों के आधार से कहां जाता है, कहां से कहां उतरता है, ये सब केवल ज्ञानियों ने जीवों की इन परिणति को जाना केवल ज्ञान में, और जैसा जाना उसको वैसा ही कहा। ये जीव सिद्धांत है कह रहे हैं ना, जीव सिद्धांत का मतलब किसी ने बनाया हुआ सिद्धांत नहीं होता, ये स्वयं निसर्ग से रहता है, बना करके कोई डालता नहीं इस सिद्धांत को, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, और वस्तु स्वरूप यहां से यहां चढ़ रहा, क्यों चढ़ा ये कोई प्रश्न नहीं, वो तो निसर्ग नियम है, वस्तु स्वरूप है। पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में भी आ सकता है, ये केवली भगवान ने कहा। तो केवली भगवान ने क्या नियम बनाया, हे जीवो मैं केवल ज्ञानी हूं, तुम जब भी पहले गुणस्थान में आओगे तो पहले से सातवें गुणस्थान में भी आ सकते हो, ऐसा क्या परमिशन लिख करके दे दिया, निश्चित करके दे दिया, नहीं। जीव स्वतः अपने परिणामों से एक साथ रत्नत्रय पर जाना चाहता है, मुनि बनना चाहता है, तो प्रथम गुणस्थान से दीक्षा लेकर सातवें गुणस्थान में भी आ सकता है, छठे में नहीं आएगा। ये किसने सिद्धांत बनाया छठे में नहीं आएगा, किसी ने बनाया नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है, और जो वस्तु स्वरूप है उसको केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान में देखा है, और जैसा देखा है वैसा ही कहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, जीव सिद्धांत पढ़ रहे हैं, किसी के द्वारा बनाया गया संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे देश का संविधान किसी ने बना लिया और जैसा उन्होंने बनाया है सबको ऐसा चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये प्रकृति नियम है, निसर्ग नियम है। हाँ, जैसा है वैसा दिखता है वहां, और अनादि काल का भी दिखता है, अभी का भी दिखता है, और भविष्य का भी दिखता है। तो केवल ज्ञानी ने तीनों काल में देखा, क्या देखा? पहले गुणस्थान से भी सप्तम गुणस्थान वाले जीव आने वाले बहुत थे, तो बताओ इसको, बताओ बताओ, तो बता दिया, जो जैसा दिखा वैसा बता दिया। और अगर पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में कोई भी जीव आज तक नहीं आया होता तो केवल ज्ञान में भी नहीं आता, और केवल ज्ञान में नहीं आता तो वो केवल ज्ञानी ऐसा पहले से सातवें गुणस्थान का उपदेश भी नहीं देते, ऐसा है। अब शंका समाधान हो गया ना, हो गया।
हाँ,
मन विचलित होने से नीचे आता है, मन विचलित नहीं होता वहां। देखो वहां क्या होने से आता है, दबा करके गया है, स्प्रिंग दब गया है और पूरी शक्ति से दबा करके उठे। कब तक दबाओगे, वहीं रहोगे दबा दबा करके? नहीं, वहां रह भी नहीं सकते, अंतर मुहूर्त तक ही उसका काल है। दबा करके आप अंतर मुहूर्त तक ही रख सकते हैं कर्म रूपी स्प्रिंग को, ज्यादा देर तक नहीं, अंतर्मुहूर्त तक ही दबाने का काल है। उसके बाद तो आप थक जाएंगे, आपके परिणामों में, आपके भावों में ये कैपेसिटी नहीं कि वहां पर उन्हीं भावों के साथ हम दिन भर रहे, बहुत समय तक रहे, ये शक्ति परिणामों में नहीं होती। अपने परिणामों की कमजोरी से, यानी वो जो विशुद्ध परिणाम है, उन परिणामों को टिकाना तो केवल अंतर्मूर्त काल तक ही संभव है। उसके बाद नियम से परिणामों में कमी आने लगती है, विशुद्धि घट गई तो जिस जहां तक विशुद्धि घटना चाहिए उतनी घट गई, तो वहां उस सीमा पर मोहिनी कर्म का उदय हो जाता है और वो दसवें गुणस्थान में गिर जाता है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा जीव सिद्धांत है। नहीं नहीं, चार बार चढ़ना ही चाहिए ऐसा भी कोई नियम नहीं है। जिनको उपशम श्रेणी चढ़ना है वो अधिक से अधिक एक भव में दो बार चढ़ सकता है, चढ़े या नियम नहीं। आप चढ़ना नहीं चाहते, स्प्रिंग को ही हटाओगे तो क्यों चढ़ोगे? क्षयिक चारित्र प्राप्त करोगे आठवें गुणस्थान में, तो फिर डायरेक्ट बारहवें में चले जाओगे, आठ नौ दस बारह। हाँ, ट्राई करने के वो नहीं है, ये उसको करना नहीं है। उपशम श्रेणी से क्या मोक्ष जा सकते हैं? फिर काय को ट्राई कर रहे हैं? मोक्ष ही जा नहीं सकते तो फिर उपशम श्रेणी चढ़ ही क्यों रहे हैं? ट्राई क्षायिक का करो, आठवें गुणस्थान में जाकर क्षायिक चारित्र का प्रयत्न करो, ये कहा है, उससे केवल ज्ञान होगा। चार चांस किसके लिए? क्षायिक के लिए? क्षायिक के लिए चार चांस क्यों नहीं? हा? जाता ही है तो फिर चांस क्या? और पहली बार में ही जा रहा है तो वहां पर चांस की बात ही नहीं, वो नियम से जाएगा, उधर चार चांस नहीं। उपशम श्रेणी के लिए ये कहा है कि ऐसे उपशम रूप परिणामों को जीव मोक्ष जाने से पहले के भावों में, पहले के भावों में अधिक से अधिक कितने बार चढ़ सकता है? तो चार बार चढ़ सकता है, ये कहा है।
हाँ,
नहीं चढ़ा नहीं है तो नहीं चढ़ा, उसको चढ़े बिना भी मोक्ष की सिद्धि हो सकती है। देखो हम हैं, हम हैं, अपन है कि नहीं? अनादिकाल से हमने आठवें गुण स्थान को एक बार भी प्राप्त नहीं किया है, समझ के चले। और इस भव में वज्र ऋषभ नारद सनन मिला है और श्रेणी चढ़ने की क्षमता है, सब कुछ है, ऐसा शरीर मिला है, नहीं मिला है, पंचम काल है, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं। मुझे ये विचार करना चाहिए कि उपशम श्रेणी तो चढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे वहां जाकर वापस क्यों आना, फालतू, ये फालतू चीज है, फालतू काम करना नहीं चाहिए। किंतु करना नहीं चाहिए ये सोच तो रहा हूं, लेकिन मैं जब आठवें गुणस्थान में गया, मेरे परिणामों की शक्ति कम पड़ गई, कर्मों के क्षय करने की जो विशुद्ध परिणाम प्राप्त होना चाहिए था वो न हो करके उपशम करने योग्य ही परिणाम हो गए, ताकत कम पड़ गई, विशुद्ध परिणामों की शक्ति कम पड़ गई, और फिर मैं क्या करूंगा, मजबूरी से जाऊंगा ना, पर चाहता था क्या मैं, नहीं चाहता था, लेकिन परिणामों की विशुद्धि कम पड़ गई, ताकत कम पड़ गई, तो मुझे चढ़ना ही पड़ेगा। तो एक बार चढ़ा ग्यारहवें गुणस्थान तक, अंतर्मूर्त में होकर के अंतर्मूर्त रहकर नीचे गिरा, पुनः मैं छठे में आ गया। अब छठे में तो गिर के आ गया, लेकिन जो नहीं चाहता था वही हो गया है? आप जब लॉटरी टिकट खरीदते हैं, ये ऐसे थोड़ी खरीदते हैं कि फालतू चले जाइए, लेकिन फालतू होता है कि नहीं, वो न चाहते हुए भी होता है। ये उदाहरण फिट है। लॉटरी आप निकालते समय फालतू नहीं निकालते, ये लग ही जाए इसी उद्देश्य से लगते, लेकिन जब आपको लगता नहीं तो फालतू जाता है कि नहीं, वो ऐसा। हाँ चाहता ही नहीं, हाँ आत्मा में रहता। अब हम नीचे उतर के आ गए, पुनः हमने ट्राई किया श्रेणी चढ़ने का, अब कि इसके बार मैं शायद ही चढ़ूंगा, एक में फॉल हो गया मैं, हाई जंप में, हाई जंप में फॉल हो गया, दूसरी बार चढ़ूंगा, भावना तो यही है कि क्षपक श्रेणी ही चढ़ूंगा, लेकिन पुनः एक बार ऐसा हो सकता है मेरा कि विशुद्ध परिणाम कम पड़ गए, दूसरा बार चढ़ गया पुनः और नीचे आ गया, पुनः नीचे आके देखा तो मैं ग्यारहवें गुण स्थान तक हो आ गया, मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर तीसरी बार तो नहीं चढ़ सकता इस शरीर से। अब मैं क्षपक श्रेणी चढ़ सकता हूं, चढ़ना चाहो तो चढ़ सकता हूं, कभी भी चढ़ सकता हूं इस पर्याय से। अगर नहीं चढ़ सका, अगर नहीं चढ़ सका तो ऐसा भी होता है, नहीं चढ़ा तो फिर मरण भी होगा ना एक दिन आयु के अंत में, तो मैं कहां जाऊंगा, देवगति में जाऊंगा, और देवगति में कहां जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा, वज्र ऋषभ नारद सनन है, कहां तक जाऊंगा, अधिक से अधिक सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता हूं। अगर नहीं गया उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि वज्र ऋषभ नारद सनन है तो सर्वार्थ सिद्धि ही पहुंच गए, ऐसे कोई गारंटी नहीं। वो सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेने के लिए भी शुक्लेशा चाहिए, और शुक्लेशा भी कम पड़ गए, उसमें कमती आ गई, तो मैं पहले स्वर्ग में भी जन्म ले सकता हूं, पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक कहीं भी जन्म ले सकता हूं, भवनत्रिक में नहीं जाऊंगा, ये जीव सिद्धांत है, ये मेरा आत्म सिद्धांत है कि क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं रत्नत्रय पूर्वक मरण कर रहा हूं, और जहां सम्यक दर्शन है वो जीव भवनत्रिक में जाता नहीं, ये ऐसा सिद्धांत है।
ग्यारहवें गुणस्थान तक यदि मरण आ गया तो मोक्ष की अपेक्षा का क्या होगा?
मोक्ष की अपेक्षा का क्या होगा। देखो एक बात, ये मोक्ष की जो अपेक्षा रहती है वो छठे गुण स्थान में और सप्तम गुण स्थान तक ही रहती है। श्रेणी चढ़ने के बाद मोक्ष की अपेक्षा भी नहीं रहती, वहां तो ध्यान अवस्था है, निर्विकल्प अवस्था है। मुझे मोक्ष मिले ये विचार वहां नहीं है। और उसका क्या होगा, छठे गुण स्थान में मोक्ष के जाने की भावना भाई थी, उसका क्या होगा, तो व्यर्थ होगा। और क्या होगा, नहीं गए व्यर्थ हुआ। पर भावना करना गलत है क्या? भावना प्रबल रहनी चाहिए कि मोक्ष ही जाना है, स्वर्ग की भावना नहीं होना चाहिए।
आयु कर्म किसी के हाथ में नहीं ना?
हाँ, आयु कर्म किसी के हाथ में नहीं है, वो तो आत्मा के हाथ में। खत्म हो तो जाना ही पड़ेगा। किसको? एक मुनि को, क्या श्रावक को, क्या सबको, दोनों को? हाँ ठीक है ना, जाना ही पड़ेगा। सम्यक दर्शन यदि आपको हुआ है और एक बार भी हुआ है तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बीच में आपको मोक्ष जाना ही पड़ेगा। हाँ ही पड़ेगा। वो मोक्ष कितना सम्यक दर्शन का कितना उपकार है, देखो तुमको ले ही जाएगा, वो अनंत काल तक संसार में भटकने नहीं देगा, पुनः आएगा और ले ही जाएगा आपको। आप उससे भले ही छूट जाओ, सम्यक दर्शन छूट गया, लेकिन आपको पुनः एक बार आप प्राप्त करेंगे ही और मोक्ष जाएंगे ही, वो प्राप्त होगा ही। घड़ी बंद पड़ गई है, जब से देख रहे हैं एक ही जगह है काटा। पांच बज गया, अच्छा और पांच मिनट बाकी। हाँ आत्मा के हाथ में है। हाँ कर्म अपनी शक्ति जरूर रखते हैं, कर्मों के पास अपनी शक्ति तो होती ही है, परंतु कर्मों की उस शक्ति को दबाकर ऊपर उठने की शक्ति किसमें है? हाँ पुरुषार्थ अगर आत्मा दबाने का या हटाने का करेगा तो स्वयं ही करेगा। तो कर्म हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, कर्म हमारे लिए कुछ कर सकते हैं कहना ये कब, जब हम कमजोर रहेंगे वो सब कुछ करेंगे, परंतु उनसे ज्यादा हमारा पुरुषार्थ, हमारी शक्ति बढ़ेगी तो कर्म के प्रति हम सब कुछ कर सकते। कर्म हमारे लिए कब कुछ कर सकते हैं, ठीक है जब तक हम सोए हुए हैं सब कुछ कर सकते हैं, हम जाग गए तो कर्म कुछ नहीं कर सकते, हमें तो जागना पड़ेगा। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जागना पड़ेगा। कहीं हमको कर्म दबा न ले। ऐसे जागने से मिलता है मोक्ष? मिल सकता है, जोरदार रखो पुरुषार्थ। दूसरा पाठ प्रारंभ करना था, यहीं बैठ गया, 1.5 घंटा चला गया। पता चला 1.5 घंटा कैसे गया? ये तत्व चर्चा की महिमा है। और घर में कुर्सी पर बैठे, इधर बैठे, सकाल पड़े, वो आया ये आया, कितने सारे विकल्प, कुछ उसमें आ गया तो कितने सारे विकल्प होते हैं। सब ये अशुभ की क्रियाएं। और यहां बैठकर तत्व चर्चा करने से, उपदेश सुनने से कितना अच्छा भाव लग गया, इसमें क्या कर्म निर्जरा नहीं हुई? इससे सम्यक दर्शन भी प्राप्त होता है। इतनी सारी चर्चाएं सुनने से, अरे ये तो जीव सिद्धांत ऐसा है, ये तो सत्य है, इस पर हमें विश्वास करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, ऐसा क्या भाव नहीं होते? यही सम्यक दर्शन का लाभ है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसको सुन करके अगर इस पर श्रद्धा आ गई तो सम्यक दर्शन आपको प्राप्त हो गया। और वो अगर एक बार भी प्राप्त हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में आप नहीं चाहते हुए भी मोक्ष जाना पड़ेगा। नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ेगा आपको। सम्यक दर्शन भी कहता है हम आना पहले से नहीं चाहते थे और तुमने अपने स्वयं के पुरुषार्थ से पांच लब्धियों में ढलकर मुझे बुलाया है तो तुमको भी अपनी शक्ति बताएंगे, वो कह करके निकल जाता है। और अर्ध पुद्गल परावर्तन के बीच बीच में आपको एक बार लेकर आपके पास आकर संसार के सारे विषय कषाय है ऐसे परिणामों को उत्पन्न करा के चारित्रिक और आपको ले ही जाएगा। मुनि बनोगे ही, मुनि दिगंबर मुनि बनना ही पड़ेगा। नहीं भी बनते हो तो कान पकड़ करके वो बना देगा। क्यों कान पकड़ेगा? तुमने हमको क्यों बुलाया था अर्धपुद्गल करा परावर्तन काल के पीछे? हमको क्यों बुलाया था? तुमने हमको बुलाया है तो मैं भी तुमको बुलाऊंगा। हाँ, जबरदस्ती जबरदस्ती वो काम करेगा। सम्यक दर्शन आपको मोक्ष ले जाएगा। ऐसे परिणाम स्वतः उत्पन्न होंगे ही, नियत है, वो नियत है। ठीक है, जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी।